بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کے سبھی شروتاؤں کو زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 207 سے 209 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پایا ہے شری سبز علی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة خطوات الشيطان، إنه لكم عدو فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو ایشور کی مرضی کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتینت کرونا میں ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب پورن روپ سے اسلام میں پروشت ہو جاؤ، اور شیطان کے پچنوں کا انسرن نہ کرو، کہ نسندے وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ پھر یدی تم اسپشٹ نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی لڑکھڑا گئے، तो जान लो कि निसंदेह ईश्वर अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, parstoday.com/hi। आज रविवार है, जनवरी की 31, जमादी सानी की 17 और बहमन माह की 12 तारीख। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। एक घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आरंभ हम विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद आप अनमोल बातें नामक कार्यक्रम सुनेंगे। उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा होगी, जिसके बाद हम आपको स्वतंत्रता प्रभात के संबंध में विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे। हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरान ईश्वरीय चमत्कार। तो ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अगर आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रियाओं को आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता का जश्न शुरू, वरिष्ठ नेता ने इमाम खोमेनी के मजार पर हाजिरी दी। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि इस्लामी सरकार पीड़ितों की मददगार है। भारतीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ईरान के दौरे पर हैं। बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अमेरिका के विमान वाहक जलपोत पर हमले का अभ्यास किया। और अब विस्तार से समाचार सुनिए।
आज इस्लामी गणतंत्र ईरान के आधुनिक इतिहास का बहुत अहम दिन है, जिसे ईरान में स्वतंत्रता प्रभात कहा जाता है। स्वतंत्रता प्रभात 10 दिन मनाया जाता है, जिसका ईरानी कैलेंडर के हिसाब से आज पहला दिन है, लेकिन ईसवी कैलेंडर के मुताबिक ये 1 फरवरी से शुरू होगा। 12 बहमन बराबर 1 फरवरी सन 1979 को इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी 15 साल देश निकाले का जीवन गुजारने के बाद स्वदेश लौटे थे। इमाम खुमैनी की वतन वापसी के 10 दिन के भीतर इस्लामी क्रांति सफल हुई थी। इसी वजह से स्वर्गीय इमाम खुमैनी की वतन वापसी के दिन को ईरान में दह फज्र अर्थात 10 दिन का स्वतंत्रता प्रभात कहा जाता है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को श्रद्धांजलि दी। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ईरान में स्वतंत्रता प्रभात के आगाज और इस्लामी क्रांति की 42वीं सालगिरह के अवसर पर रविवार की सुबह तेहरान के बहिश्त ज़हरा कब्रिस्तान में इमाम खुमैनी के रोजे पर हाजिर हुए और वहां पवित्र कुरान की तिलावत और नमाज पढ़कर इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी को श्रद्धांजलि दी।
ईरान के राष्ट्रपति इस्लामी क्रांति की सफलता की 42वीं वर्षगांठ की बधाई देते हुए कहा है कि ईरान की सरकार पीड़ितों की समर्थक है। हसन रूहानी ने इस्लामी क्रांति की सफलता की 10 दिनों तक जारी रहने वाले जश्न के आरंभ के अवसर पर कहा कि 1 फरवरी से جس دن امام خمینی مہاشکتیوں کے انمانوں کے وپریت جنتا کے بھاری سواگت کے ساتھ ایران پہنچے تھے، ایران کے اتہاس میں ایک بے حد یادگار و ویبھوشالی دن ہے۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا کہ آج کا دن ایران کے مہان راشٹر تھا سبھی سوتنترتا پریمیوں اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی شبھ دن ہے۔
ودیش منترالے کے پروکتا نے کہا کہ فارس کی کھاڑی میں استھرتا اور اشانتی میں فرانسیسی ہتھیاروں کی بھی بڑی بھومکا ہے۔ سعید خطیب زادے نے فرانس کی اور سے فارس کھاڑی کے عرب دیشوں کو بے حساب ہتھیار بیچے جانے کے بارے میں کہا کہ فرانسیسی ادھیکاری فارس کی کھاڑی کے عرب دیشوں کو بہت بڑی ماترا میں ہتھیار بیچے جانے سے اگر بہت چنتت ہیں تو اچت یہ ہوگا کہ وہ اس بارے میں اپنی نیتوں پر پنروچار کرے۔
بھارتی ودیش منترالے میں پشچم ایشیا وبھاگ کے ندیشک نے تہران دورے پر اسلامی گڑتنتر ایران کے اپ ودیش منتری سے بھیٹ کی۔ بھارتی ودیش منترالے میں پشچم ایشیا وبھاگ کے ندیشک جے پی سنگھ ایران بھارت کے بیچ راجنیتک بات چیت کے لیے تہران کے دورے پر آئے اور شنیوار کو انہوں نے ایران کے اپ ودیش منتری سید عباس عراقچی سے بات چیت کی۔
بھارت میں زونی دوت کا کہنا ہے کہ دوتاواس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور شکروار کو دوتاواس کے قریب ہوئے دھماکے سے پہلے بھی یہ ہائی الرٹ پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ دھمکیاں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے دوتاواس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے زونی دوت ران مالکا نے کہا کہ انہیں شکروار کو ہوئی گھٹنا پر حیرانی نہیں ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف 3 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے۔
بحرین کے دھرم گروؤں نے مانگ کی ہے کہ جن عرب دیشوں نے اویدھ زائونی شاسن کے ساتھ سمبندھ سامان بنائے ہیں ان کا بہشکار کیا جانا چاہیے۔ المنار ٹی وی چینل کی رپورٹ کے انوسار بحرین کے دھرم گروؤں نے رویوار کو ایک بیان جاری کیا۔ اس بیان کے مادھیم سے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سمبندھ سامان کرنا فلسطینیوں کے ساتھ وشواس گھات ہے۔
فلسطین کے اسلامی جہاد سنگٹھن کے سدسیہ نے بل دیا ہے کہ غزہ اور لبنان کو اسرائیل کی ور سے دی جا رہی دھمکیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فلسطینیوں اور پورے علاقے کے لیے خطرناک یوجنائیں رکھتا ہے۔ لبنانی سماچار پتر العہد کی رپورٹ کے انوسار یوسف الحسینا نے کہا ہے کہ ایک نسل بھیدی شاسن کے روپ میں زانی شاسن کو آتنکواد کی لت لگ گئی ہے اور اسرائیلی سینا ادھیکش کی حالیہ دھمکی اسی آتنکواد کا پریڑام ہے۔ الحسینا نے کہا کہ فلسطین اور علاقے میں اسرائیلی اپرادھ ایسی دشا میں جاری ہیں کہ جب دنیا اور سنیکت راشٹر سمبندت سنگٹن چپی سادھے ہیں۔
امریکہ کی اور سے دکشنی چین کے سمندر میں اکساوے کی کاروائی کے بعد چین نے امریکہ کے ویمان واہک جل پوت پر حملہ کرنے کا ابھیاس کیا۔ فارس نیوز کے انوسار امریکہ کی سینا نے شکروار کو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کی پشٹی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ حال ہی میں چین کے بم ورشک ویمانوں نے اس دیش کے دکشن میں امریکی ویمان واہک جل پوت کا ماڈل بنا کر اس پر حملے کا ابھیاس کیا۔
دکشنی عراق میں امریکی فوجوں کے کارواں کے راستے میں ایک بم دھماکہ ہوا۔ شنیوار کی رات کو سابرین نیوز چینل کے انوسار دکشنی عراق میں دیوانیہ پرانت میں امریکی فوج کی لاجسٹک ٹکڑی اس دھماکے کا نشانہ بنی۔ اس چینل نے یہ نہیں بتایا کہ کس طرح امریکی لاجسٹک ٹکڑی اس دھماکے کا نشانہ بنی۔
افغانستان میں ایک بار پھر طالبان کی کارروائی میں کم سے کم 2 لوگ مارے گئے جبکہ 14 انیہ گھائل ہو گئے۔ کابل سے ہمارے سنواد داتا کے انوسار افغانستان کے فاریاب پرانت کے پولیس پروکتا نے بتایا کہ رویوار کو دوپہر میں فاریاب کے المار نگر میں بازار میں طالبان کی اور سے کیے گئے مارٹر حملے میں 16 عام لوگ گھائل اور ہتاہت ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کے اس حملے میں 2 عام لوگ مارے گئے تتھا 14 انیہ گھائل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ گھائلوں میں کچھ بچے بھی شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ अनमोल बातें। दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें में आपका स्वागत है। आज भी हम जबान से जुड़े कुछ पहलुओं की चर्चा करेंगे। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर के हर अंग के अलग अलग कार्य हैं और हर कार्य की अपनी अलग अलग विशेषता है। जबान मनुष्य के शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है कि जिसकी अनगिनत विशेषताएं हैं। जबान वो अंग है जो इंसान के व्यक्तित्व की पहचान कराती है। जब इंसान बोलता है तो दूसरे पहचानते हैं कि वो किस व्यक्तित्व का स्वामी है। तो जो चीज इंसान को पहचानवाती है, इंसान को चाहिए कि उसे संभाल कर रखे, उसका ध्यान रखे, उससे निश्चेत न हो और उसे अच्छी चीजों का आदि बनाए। महान ईश्वर पवित्र कुरान में कहता है कि लोगों से अच्छी बात करो। पवित्र कुरान की इस आयत की व्याख्या में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सभी लोगों से अच्छी तरह बात करो, चाहे मोमिन हो या विरोधी। मोमिन अपने मोमिन भाई से अच्छी तरह बात करता है और विरोधियों के साथ नरमी से बात करता है ताकि उसका रुझान व झुकाव ईमान की तरफ हो जाए। और अगर ईमान की तरफ उसका रुझान ना भी हो, तब भी वो अपने इस व्यवहार से अपने हक में और अपने मोमिन भाइयों के हक में उनकी बुराइयों की रोकथाम करता है। अगर इंसान दूसरों के साथ अच्छी तरह बात करता है तो दूसरे उससे कष्ट पहुंचाने से परहेज करते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर इंसान लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसका अच्छा व्यवहार ढाल बनकर उसकी रक्षा करता है और बहुत सी मुसीबतों को उसका व्यवहार इंसान तक नहीं पहुंचने देता। समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को अपनी जबान से कष्ट पहुंचाते हैं, और एक समय वो भी आता है जब जबान से दूसरों को कष्ट पहुंचाना उनके स्वभाव का भाग बन जाता है। और जब तक वो दूसरों को अपनी जबान से कष्ट नहीं पहुंचा लेते, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता है। जबकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जबान से दूसरे लोग सुरक्षित रहें। जो लोग अपनी जबान से दूसरों को डंक मारते हैं, उन्हें महान ईश्वर के दर्दनाक आजाब से डरना चाहिए, क्योंकि हदीस में है कि महान ईश्वर जबान को वो आजाब देगा जो शरीर के किसी भी दूसरे अंग को नहीं देगा। इस प्रकार से कि जबान कहेगी कि पालनहार, तूने मुझे वो दंड दिया जो किसी चीज को नहीं दिया। जवाब में कहा जाएगा कि तुझ से जो बात निकली वो पूरा पश्चिम में पहुंच गई और उसकी वजह से नाहक खून बहा, माल लूटा गया, इज्जत से खिलवाड़ किया गया। आज आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कुछ लोगों की जबान की वजह से दुनिया में पता नहीं कितने हजार बल्कि कितने लाख लोगों की जान जा चुकी है, और ये सिलसिला आज भी जारी है और न जाने कब तक जारी रहेगा। अगर लोग अपनी जबान को नियंत्रण में कर लें तो कितने लोगों की जान बच सकती है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन की जबान उसके दिल के पीछे होती है। जब वो कुछ बोलना चाहता है तो सबसे पहले उसके बारे में सोचता है, फिर बोलता है, और मुनाफिक की जबान उसके दिल के आगे होती है, और जब वो बोलना चाहता है तो उसके बारे में नहीं सोचता है। इस हदीस से ये बात स्पष्ट है कि मोमिन की एक अलामत यह है कि वो बोलने से पहले सोचता है, जबकि मुनाफिक जो भी उसके मुँह में आता है बोलता है और उसके बारे में सोचता नहीं है। इसी प्रकार की एक हदीस हजरत अली अलैहिस्सलाम से है जिसमें आप फरमाते हैं, मोमिन की जबान उसके दिल के पीछे होती है और मुनाफिक का दिल उसकी जबान के पीछे होता है, क्योंकि जब भी मोमिन कुछ बोलना चाहता है तो सबसे पहले उसके बारे में सोचता है। अगर सही होता है तो बोलता है और अगर सही नहीं होता है तो नहीं बोलता है, کنتو منافق جو کچھ اس کی زبان پر آتا ہے بولتا ہے، اس چیز کو سمجھے بنا کہ کون سی بات اس کے ہت میں ہے اور کون سی اس کے ہت میں نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک ان استھان پر فرماتے ہیں کہ مومن کی زبان پر ایشوریہ پرکاش ہوتا ہے اور منافق کی زبان پر شیطان ہوتا ہے، جو بولتا ہے اور منافق کا تقویٰ کیول اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی جو ویکتی منافق ہوتا ہے وہ اچھی اور دھارمک باتیں کیول زبان سے کرتا ہے، عمل سے نہیں۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام ایک ان استھان پر فرماتے ہیں کہ منافق کا گیان اس کی زبان تک ہوتا ہے اور مومن کا گیان اس کے عمل میں ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرپوتر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سورگ میں جانے والوں کی چار علامتیں ہیں، ہنسمکھ چہرہ، نرم زبان، کرپالو دل اور دانی ہاتھ۔ دوستوں، آج کے کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ انومتی دیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتانترک ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
شوتاؤ، راج نیتک چرچا کے دینک کاریکرم میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو گیات ہے کہ ایران کی اسلامی کرانتی کو سفل ہوئے لگ بھگ 42 سال کا سمے گزر رہا ہے اور وہ دن پرتی دن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ روچک بات یہ ہے کہ 42 ورشوں میں ایسا کوئی ہتھ کنڈا نہیں بچا ہے جسے امریکہ اور اس کے پچھلگوں نے ایران کے خلاف ویوہارک بنانے کا پریاس نہیں کیا، پر امریکہ اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کو انت میں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ لبنان میں راشٹرپتی کاریالے نے کہا ہے کہ سعد حریری اس سرکار گٹھن کرنے کے مارگ میں قانون کا الگھن کر رہے ہیں اور وہ قبائلی مت بھیدوں کی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لبنانیوں کا کہنا و ماننا ہے کہ اس پرکار سے سرکار گٹھت نہیں ہو سکتی۔ شوتاؤ، یہ بات مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ زمین پر اگر کہیں سورگ ہے تو وہ کشمیر ہے، یعنی کشمیر کی سندرتا کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ بہت سی فلموں کی شوٹنگ بھی کشمیر میں ہوتی ہے، پرنتو جب سے وہاں ہنساتمک گھٹناؤں میں تیزی آئی ہے فلموں کی شوٹنگ بند ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو گیات ہے کہ ایران کی اسلامی کرانتی کو سفل ہوئے لگ بھگ 42 سال کا سمے ہو رہا ہے اور ایران کی اسلامی ویوستھا دن پرتی دن مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور پرگتی کر رہی ہے۔ روچک بات یہ ہے کہ 42 ورشوں میں ایسا کوئی ہتھ کنڈا نہیں بچا جس سے امریکہ اور اس کے پچھلگوں نے ایران کے خلاف ویوہارک بنانے کا پریاس نہ کیا ہو، پر امریکہ اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ پھر بھی وہ تہران کے خلاف کوئی شڈیانتر رچنے میں سنکوچ سے کام نہیں لیتے ہیں۔ سمیکھیا پیش کریں ساتھی قائم رضوی۔
ایران میں اسلامی کرانتی کی سفلتا کو سوتنترتا پربھات کے روپ میں 10 دنوں تک منایا جاتا ہے۔ وگت میں ان دنوں ایران میں مہتوپورن گھٹنائیں گھٹیں اور 11 فروری 1979 کو اسلامی کرانتی سفل ہوئی تتھا شاہ کی تانا شاہی سرکار کا انت ہو گیا۔ 12 بہمن کو سورگی امام خمینی فرانس سے سودیش واپس آئے اور تہران پہنچنے کے بعد انہوں نے بہشت زہرا قبرستان میں اپنے پہلے بھاشن میں بل دے کر کہا تھا کہ وہ جنتا کے متوں سے سرکار گٹھت کریں گے۔ اسی پرکار انہوں نے سمست شیتروں میں دیش کو سوتنتر بنائے جانے پر بھی بل دیا تھا، جو بعد میں کرانتی کا مضبوط آدھار بنا۔ इस्लामी क्रांति की सफलता वास्तव में साम्राज्यवादी शक्तियों पर विजय थी। इस्लामी क्रांति की सफलता उस राष्ट्र की सफलता थी जिसने वर्चस्ववादी शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए हजारों लोगों के प्राणों की आहुति दे दी थी। ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता अमरीका और विश्व की दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियों के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती और अत्याचार से पीड़ित राष्ट्रों की जागरूकता का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। अमरीका ने इस्लामी क्रांति की सफलता के आरंभिक दिनों से इस्लामी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने को अपना स्ट्रेटेजिक लक्ष्य बना रखा है। विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियां अच्छी तरह से जानती हैं कि ईरान को मजबूर करने के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट जनता व लोगों की उपस्थिति और उनका साहसिक प्रतिरोध है। अमेरिका ने इन समस्त वर्षों में ईरानी राष्ट्र पर प्रतिबंध लगाए ताकि अधिक से अधिक दबाव डालकर ईरानी जनता को इस्लामी व्यवस्था के समर्थन से रोका जा सके, परंतु 42 वर्षों का समय बीत जाने के बाद आज तक अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने षड्यंत्रों में सफल नहीं हो सका है। ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों पर सवाल उठाना, ईरान की मिसाइल क्षमता को खतरा दर्शाना, क्षेत्र में ईरान की रचनात्मक भूमिका के बारे में निराधार और भ्रांति फैलाने वाले दावे करना, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के महानायक जनरल कासिम सुलेमानी और मोहसिन फखरी जादे जैसे ईरान के महान परमाणु वैज्ञानिकों व हस्तियों की हत्या, इस्लामी क्रांति को आघात पहुंचाने के लिए अमरीका की कुटिल चालों के मात्र कुछ नमूने हैं। परंतु ईरान ने राष्ट्रीय एकता और शक्ति के साथ ये दर्शा दिया है कि कोई भी ताकत ईरानी राष्ट्र व इस्लामी व्यवस्था को आघात नहीं पहुंचा सकती।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
लेबनान में राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि साद हरीरी सरकार गठन करने के मार्ग में कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और वो कबायली मतभेदों की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। बहुत से लेबनानियों का कहना व मानना है कि सरकार से सरकार का गठन संभव नहीं है क्योंकि साद हरीरी उन्हीं चीजों की मांग कर रहे हैं जिनकी मांग अमेरिका और सऊदी अरब कर रहे हैं। साथ ही मोहम्मद अली कुमी।
लेबनान में राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि साद हरीरी सरकार गठन के मार्ग में कानून का उल्लंघन कर रहे और कबायली मतभेदों की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। मुमकिन नहीं किस प्रकार से सरकार गठित हो। साद हरीरी के समस्त बहाने अमेरिका और सऊदी अरब की मांगे हैं। वो 120 सांसदों में से 80 सांसदों की न तो अनदेखी कर सकते हैं और न ही कानून उन्हें इस बात की इजाजत देता है। 77वां मंत्रिमंडल गठित करने के जिम्मेदार साद हरीरी ने कहा है कि हमारी सरकार 18 से 20 टेक्नोक्रेटों और विशेषज्ञों से गठित होनी चाहिए। यह ऐसी बात है जिसके बारे में लोगों और विशेषज्ञों का कहना है कि ना तो इसमें वास्तविकता है और ना ही होने वाली है। सरकार गठित नहीं हो पाएगी। हरीरी 5 वर्षीय सरकार के बहाने व्यक्तिगत और दलगत हितों की चेष्टा में है। सरकार के मंत्रियों का निर्धारण सांसद नहीं करेंगे बल्कि अमरीका और सऊदी अरब की इच्छा को नजर में रखकर किया जाएगा। लेबनान के सेंट्रल बैंक के प्रमुख रियाज सलामा ने एक टीवी इंटरव्यू में परोक्ष रूप से इस देश के राष्ट्रपति को आर्थिक समस्याओं का जिम्मेदार बताया और कहा है कि नई सरकार के गठन के मार्ग में वो रुकावट बने हुए हैं। ज्ञात रहे कि रियाज सलामा पर $40 करोड़ के भ्रष्टाचार और अमरीका के वित्त मंत्रालय से निकट संबंध होने का आरोप है। अमरीकी कभी भी न तो सच्चे थे और न हैं। लेबनान के संसद में ईसाइयों के सबसे बड़े धड़े के नेता जिब्रान बासिल पर धन शोधन के आरोप में प्रतिबंध लगाते हैं और चूंकि रियाज सलामा लेबनान के अंदर प्रतिबंधों को व्यवहारिक बनाने और राष्ट्रपति को आघात पहुंचाने के हथकंडे हैं, इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं ताकि अमरीका के मद्देनजर सरकार का आसानी से गठन हो सके। लेबनानी मीडिया का कहना है कि व्हाइट हाउस में बाइडेन के सत्ता में आ जाने के बाद लेबनान की नई सरकार के गठन के पीछे अमरीकी फ्रांसीसी षड्यंत्र भी सक्रिय हो गए हैं। राजनीतिक टीकाकारों का मानना है कि लेबनान में साधारण के प्रयास नई सरकार के गठन की दिशा में बाधा है और इसी प्रकार इस देश की समस्याओं विशेषकर आर्थिक कठिनाइयों में वृद्धि का कारण बने हैं। बैरूत में प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने से IRIB के लिए हसन अजीमजादे की रिपोर्ट।
श्रोताओं, ये बात मशहूर है और कहा जाता है कि जमीन पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, यानी कश्मीर की सुंदरता का चर्चा पूरी दुनिया में है। बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी कश्मीर में होती है, परंतु जब से वहाँ हिंसात्मक घटनाओं में तेजी आई है फिल्मों की शूटिंग बंद है और पर्यटन उद्योग पर बहुत असर पड़ा है। पर फिल्म उद्योग से जुड़ी 2 दर्जन से अधिक हस्तियां आजकल जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं और वे दोबारा फिल्मों की शूटिंग आरंभ करना चाहती हैं।
यूं तो जम्मू कश्मीर पूरे विश्व भर में पर्यटक स्थल कहलाया जाता है और पर्यटकों को और ज्यादा लुभाने के लिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने एक ऐसा प्रोग्राम आरंभ किया है जिसके अनुसार उनका ये मानना है कि अब विश्व के टूरिस्टों के साथ साथ फिल्मी इंडस्ट्री जो कभी कश्मीर में ही हुआ करती थी अब खुलकर कश्मीर आएंगे और यहां पर शूटिंग करेंगे। श्रीनगर में आजकल बॉलीवुड से वाबस्ता तकरीबन 24 के निकट ऐसे व्यक्ति आए हुए हैं जो उनके प्रतिनिधि है। उन्होंने डायरेक्टर टूरिज्म के साथ यहां पर एक भेंटवार्ता की और उसके बाद वो कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भी गए। डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर जैन यतु ने इस अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता कर कहा,
बॉलीवुड को एक अच्छा जो शूटिंग के लिए फिल्म शूटिंग के लिए माहौल चाहिए, जो सीनिक ब्यूटी चाहिए वो यहाँ अवेलेबल है। आज का जो ये टूर प्रोग्राम है जिसमें 24 के करीब हमारे मेजर फिल्म प्रोडक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनका बुनियादी मकसद टूर का ये है कि टू सी पर्सनली कि यहाँ पे किस तरीके का माहौल है, फिल्म शूटिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, यहाँ जो लोकल टैलेंट है उसको कैसे जो है वो ऑन बोर्ड लेकर के आगे बढ़ाया जाए। तो जो वो रिवायत रही है कि टूरिज्म को फिल्म शूटिंग के जरिए से प्रमोट करना, तो उसी रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए, उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज का ये टूर हमने रखा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 2-3 दिनों से चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे वो श्रीनगर में हो या आज हम पहलगाम में हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टूरिज्म सेक्टर को हम बूस्ट करना चाहते हैं और दोबारा से उसको उसका बोलबाला जो है इसका दोबारा से लाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है फिल्म शूटिंग वो जो हमारे फिल्म साज हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर के हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं।
इस बीच जम्मू कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ है और 30 वर्ष के बाद एक बार फिर श्रीनगर और श्रीनगर के निकटवर्ती क्षेत्रों में रात का तापमान -8.8 रिकॉर्ड किया गया। बताया जाता है कि 30 वर्ष के बाद ऐसा यह पहला अवसर है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरान ईश्वरीय चमत्कार, पर उससे पहले स्वतंत्रता प्रभात के अवसर पर पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम।
स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, स्वतंत्रता प्रभात के अवसर पर विशेष प्रोग्राम लेकर मोहम्मद अली कुम्मी और मरियम मेहरदादी हाजिर हैं। आशा है पसंद करेंगे।
दोस्तों, ये ईरानी कैलेंडर के सन 1357 हिजरी शमसी के 11वें महीने बहमन की 12वीं तारीख की बात है, जब 2 फरवरी 1979 का दिन था और पूरे ईरान में एक नया जोश और उत्साह था। वर्षों के निर्वासन और देश निकाले जाने के बाद इमाम खोमेनी पूरे सम्मान और गौरव के साथ स्वदेश वापस लौट रहे थे। उनके हजारों चाहने वाले तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने लोकप्रिय नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। लोगों के जज्बात क्या थे, ये एक गीत ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। फारसी भाषा के इस गीत में शाह के फरार और इमाम खुमैनी के आगमन के बारे में कहा गया है कि जब शैतान चला जाता है तो फरिश्ते का आगमन होता है।
دیو چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار تختر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تختر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید
جب امام خمینی کا हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरा तो दिलों की धड़कनें बढ़ गईं और लोग अपने प्रिय आध्यात्मिक नेता का दीदार करने के लिए टूट पड़े। एयरपोर्ट से लेकर शहीदों के कब्रिस्तान गुलजार शोहदा के मार्ग को फूलों से सजाया गया था। बोइंग 747 हवाई जहाज का गेट खुला और इमाम खुमैनी बाहर निकले और उनकी अनंत महिमा ने विलायत के प्रेमियों का रूप धारण कर लिया और वो ठंडी फुहार की तरह प्यासी आत्माओं पर बरस पड़ी। उन्होंने हज़रत इब्राहिम की तरह साम्राज्यवाद के बुतों को तोड़ दिया और कभी नहीं डूबने वाली इस्लामी गणतंत्र की नई सुबह की शुभ सूचना दी।
ईरान की धार्मिक जनता ने जुल्म के खिलाफ इमाम खुमैनी की पुकार को सत्य की पुकार पाया। उन्होंने देखा कि एक पवित्र हृदय वाला और रहस्यवादी शख्स पूरी श्रद्धा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह धर्म और इस्लामी मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। इसी वजह से उन्होंने इमाम खुमैनी की पुकार पर लब्बैक कहा और जुल्म के मुकाबले में डट गए और मौजे मारती हुई लहरों की तरह टूट पड़े। इस्लामिक क्रांति एक ऐसे सूर्य की तरह थी जिसने जुल्म, अपमान, निर्भरता, अधर्म, भ्रष्टाचार और समाज को नष्ट करने वाली बुराइयों से थकी मांदी जानों को आशा दी कि वे उठ सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं और समाज को एक अच्छी दिशा की ओर मार्गदर्शित कर सकते हैं। इमाम खुमैनी न केवल खुद क्रांतिकारी थे बल्कि उन्होंने राष्ट्र के दिलों और विचारों में भी क्रांति उत्पन्न कर दी थी। इसी समन्वय के परिणाम स्वरूप लोगों के सहयोग से स्वाधीनता, स्वतंत्रता और इस्लामी गणतंत्र के आधार पर इस्लामी व्यवस्था की बुनियाद रखी गई। इमाम खुमैनी तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी और लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा था कि मानो कोई चमत्कार हो रहा है।
आयतुल्ला बहिश्ती जो ईरान की इस्लामी क्रांति और इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था तथा विशेष रूप से ईरान के संविधान की रचना में महान योगदान रखते हैं, लोगों को शांत करने का प्रयास करते दिखाई दिए। उन्होंने विदेशों से आए पत्रकारों से भी शांत रहने की अपील की।
सिट डाउन प्लीज, द प्रेस एजेंसी, वी रिक्वेस्ट यू टू सिट डाउन प्लीज।
तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर नया इतिहास रचा जा रहा था। इमाम खुमैनी के औपचारिक स्वागत का प्रोग्राम शुरू हुआ और इसकी शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई। कुरान की तिलावत के बाद एक गीत पेश किया गया जो ऐतिहासिक गीत बन गया। गीत के बोल थे, खुमैनी ए इमाम, खुमैनी ए इमाम।
Thank you.
اس گیت کے بعد لاؤڈ اسپیکر پر وہ آواز گونجی جسے سننے کے لیے ایرانی جنتا کے کان ترس گئے تھے۔ یہ امام خمینی کی آواز تھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من از عواطف طبقات مختلف ملت تشکر میکنم۔
امام خمینی نے کہا کہ میں جنتا کے وبھن ورگوں کے ان جذبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ جذبات میرے کاندھے پر بہت بڑا بوجھ ہیں کہ میں اتنا بدلہ نہیں دے سکتا۔
امام خمینی کے سواگت کے لیے تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ سے شہر کے قبرستان بہشت زہرا تک 33 کلومیٹر لمبی مانو زنجیر بنائی گئی تھی۔ یہ ایک جن سیلاب تھا جو ٹھانٹے مار رہا تھا۔ بہشت زہرا قبرستان میں لگ بھگ 10 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا۔ یہاں گاڑی کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ 100 میٹر کی دوری طے کرنے میں 3 گھنٹے لگ گئے۔ امام خمینی کو مجبوراً ہیلی کاپٹر سے اس جگہ پر پہنچایا گیا جہاں انہیں بھاشن دینا تھا۔ یہیں پر امام خمینی نے اپنا یادگار بھاشن دیا اور شاہ کے بارے میں کہا کہ غدار محمد رضا پہلوی نے ہمارے دیش کو برباد اور قبرستانوں کو آباد کیا۔
باید عرض کنم کہ محمد رضا پہلوی این خائن خبیث مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد۔
بھاشن دینے کے بعد امام خمینی ہیلی کاپٹر سے تہران شہر کی اور روانہ ہو گئے اور اسلامی کرانتی بھرپور گتی سے اپنی منزل کی اور بڑھنے لگی۔
پشچمی معاملوں کے وشیشگ ایرانی وچارک شہید سید مصطفیٰ آوینی لکھتے ہیں، امام خمینی کوئی پیغمبر نہیں تھے لیکن پیغمبروں کی یادگار تھے جنہوں نے ایشور کے ساتھ لوگوں کے پراکرتک وچن کی یاد دلائی اور شتابدیوں تک مانوتا کے پتن کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد کی بھاتی جہالت کو مات دی اور ایک نئے دور کی شروعات کی۔
امام خمینی اپنے پوتر پروجوں کی طرح لوگوں اور سماج کے مارگ درشن تتھا ایک واقع میں نیتکتا کا پرچار کرنا چاہتے تھے۔ پیغمبر اسلام کو ایشور نے قرآن میں نیتکتا کے پرچار کا نردیش دیا تھا تاکہ اسلام کے چاہنے والے اوگت ہو جائیں کہ شاسن اور راجنیتی مانویہ گنوں اور نیتکتا سے الگ نہیں ہے۔ اسلامی سماج کا نرمان ان دو سدھانتوں کی پراپتی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس سندر میں ایشور مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ نشچت روپ سے ایشوریہ دوت کا جیون تمہارے لیے سروشریشٹ آدرش ہے۔
امام خمینی اپنے بچپن سے ہی صفائی اور ویوستھا کے لیے جانے جاتے تھے اور گیان و ویوہار، نیتوتو اور راجنیتی میں ان کی سفلتا کا مہتوپورن رہسیہ ادھک ویوستھت ہونا تھا۔ انہوں نے اپنی دن چریا کے لیے ایک لسٹ تیار کر رکھی تھی جس میں دن بھر کے کاریوں کو درج کرتے تھے۔ رات کے ان شنوں کے علاوہ جس میں وہ نماز شب پڑھتے تھے اور ایشور کی عبادت کرتے تھے، وہ اتنے ادھک ویوستھت تھے کہ ان کے کاریوں کو دیکھ کر ان کے آس پاس کے لوگ سمے کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نردھاری سمے پر کھانا کھاتے تھے اور نردھاری سمے پر سوتے تھے اور اسی طرح سے نردھاری سمے پر اٹھتے تھے۔ اگر کسی سے ملاقات کا سمے نردھارت ہوتا تھا تو ٹھیک سمے پر پہنچتے تھے۔ ۔
दोस्तों अंत में हम उनके उत्तराधिकारी और शिष्य इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामनेई का बयान का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि देश के इस महान सार्वजनिक वातावरण में इमाम खुमैनी का एक एक शब्द अद्भुत प्रभाव डालता था। उनका आध्यात्म, उनकी आंतरिक पवित्रता, ईश्वर से उनका संपर्क और आधी रातों को उनके आंसू इस अद्भुत प्रभाव का कारण थे। वो एक ऐसे लौह पुरुष और एक ऐसे व्यक्ति थे कि ऐसी दुर्घटना और हानि जो एक राष्ट्र को हिलाकर रख दिया करती थी, उन्हें नहीं हिला पाती थी। एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके निकट विश्व शक्तियों के रौब और महानता की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन यही व्यक्ति ईश्वर के समक्ष इबादत के लिए खड़ा होता था तो आंसू बहाता था।
यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इमाम खुमैनी ने आयतुल्लाह उज़्मा खामेनेई के गुणों के बारे में अनेक अवसरों पर बात की। एक अवसर पर उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई ईश्वर की नेमत है जो हमें प्राप्त हुई है।
این انقلاب به اوج خودش رسید ایشون حاضر وقعه بود همه جا تا آخر و حالا هم هست ما یک نعمتی خدا بمون این است که داده
امام خمینی کے بارے میں ایران کی اسلامی کرانتی کے ورش نیتا آیت اللہ العظمہ خامنائی کہتے ہیں ایشور سے امام خمینی کا سمبند تھا جس کی وجہ سے ان پر ایشور کی کرپا تھی آئیے ہم بھی ایشور پر بھروسے اور نشٹھا کے ساتھ پریاس کریں اور اس کے مارگ میں آگے بڑھیں۔ دوستو پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔
قرآن ایشوریہ چمتکار۔
شروتاؤں، کارکرم قرآن ایشوریہ چمتکار کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے۔ آئیے پہلے سورہ اسراء کی آیت نمبر 37 اور 38 کی تلاوت سنیں۔
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔
اور دھرتی پر گھمنڈ سے اکڑ کر نہ چلو، نشچت روپ سے نہ تو تم دھرتی کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پروتوں کی اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ تمہارے ان سب کرموں کی برائی ایشور کے نکٹ اتینت اپریہ ہے۔
पिछले कार्यक्रमों में व्यभिचार, हत्या, अनाथों पर अत्याचार और डंडी मारने जैसे कुछ बुरे व अप्रिय कार्यों से दूर रहने के संबंध में इस्लामी आदेशों का वर्णन किया गया था। यह आयत एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं शिष्टाचारिक आदेश की ओर संकेत करते हुए कहती है कि लोगों के बीच रास्ता चलते समय अहंकारी एवं घमंडी लोगों की भांति अकड़ कर न चलो, न तो इस प्रकार धरती पर पैर मारकर चलो कि मानो उसे फाड़ देना चाहते हो, और न ही इस प्रकार गर्दन अकड़ा कर चलो कि मानो स्वयं को पर्वतों से भी ऊंचा दिखाना चाहते हो, बल्कि बड़ी विनम्रता और आराम के साथ कदम उठाकर चलना चाहिए कि यह ईश्वर के भले बंदों का चिन्ह है। और इस बात की ओर सूरह फुरकान की 63वीं आयत में भी संकेत किया गया है।
जी हाँ, इस्लाम ने वाजिब और हराम अर्थात अनिवार्य और वर्जित जैसे कार्यों के अतिरिक्त भी विभिन्न आदेश दिए हैं, और यदि इन आदेशों का पालन किया जाए तो मनुष्य शिष्टाचारिक रूप से परिपूर्ण हो जाता है।
इन आयतों से हमने सीखा कि केवल बात करने और देखने में ही नहीं बल्कि रास्ता चलने में भी घमंड एक अप्रिय एवं निंदनीय कार्य है।
बुरे कार्य सभी धर्मों में अप्रिय समझे जाते हैं क्योंकि वस्तुतः ये कार्य ईश्वर की दृष्टि में अप्रिय हैं।
आइए अब सूरह इसरा की आयत नंबर 39 की तिलावत सुने।
ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا।
ये आदेश उन तत्वदर्शिताओं में से हैं जो तुम्हारे पालनहार ने अपने विशेष संदेश वही द्वारा तुम्हारे पास भेजे हैं, और कदापि ईश्वर के साथ किसी को पूज्य न ठहराना कि तुम ऐसी स्थिति में नरक में डाल दिए जाओगे कि तुम धिक्कारे व दुत्कारे हुए होगे।
सूरह इसरा की आयत नंबर 22 से लेकर आयत नंबर 38 तक ईश्वर की ओर से विभिन्न आदेशों का वर्णन किया गया है। यह आयत इन आदेशों को ईश्वरीय तत्वदर्शिता बताती है कि जो ईश्वर के विशेष संदेश वही के रूप में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी गई हैं।
रोचक बात यह है कि इन आयतों का सबसे पहला विषय अनेकेश्वरवाद से दूर रहने पर आधारित था। इस आयत में भी एक बार फिर अनेकेश्वरवाद से दूर रहने पर बल दिया गया है और कहा गया है कि अनेकेश्वरवादी धिक्कारा व दुत्कारा हुआ तथा ईश्वरीय दया से दूर होता है।
इस आयत से हमने सीखा कि ईश्वर के आदेश अकारण और तर्कहीन नहीं बल्कि तत्वदर्शिता के आधार पर हैं। अलबत्ता संभव है कि कभी हम ईश्वरीय आदेश में निहित तत्वदर्शिता को समझ ना पाएं, किंतु चूंकि हम ईश्वर के तत्वदर्शी होने पर विश्वास रखते हैं अतः हम उस आदेश को भी स्वीकार करते हैं।
ईश्वरीय कानूनों को छोड़कर मानवीय कानूनों का पालन एक प्रकार से अनेकेश्वरवाद है जिसका परिणाम पछताने और अपमानित होने के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
आइए अब सूरह इसरा की आयत नंबर 40 की तिलावत सुने।
أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا।
क्या तुम्हारे पालनहार ने तुम्हारे लिए पुत्रों को चुना है और अपने लिए फरिश्तों में से लड़कियों का चयन किया है? निश्चित रूप से तुम लोग बहुत ही बड़ी और कठिन बात कह रहे हो।
प्राचीन काल में अनेकेश्वरवादियों के बीच प्रचलित एक आस्था जो आज भी फरिश्तों के चित्रों और मूर्तियों में दिखाई देती है, ये है कि वे फरिश्तों को स्त्री समझते थे, जबकि फरिश्तों की सृष्टि मानव सृष्टि से पूर्णतः भिन्न है और उनमें मनुष्यों के विपरीत स्त्री या पुरुष होने की कोई कल्पना ही नहीं है।
रोचक बात यह है कि अनेकेश्वरवादी ऐसी स्थिति में फरिश्तों को ईश्वर की लड़कियां बताते थे जब वे लड़कियों को अपने लिए लज्जा और अपमान का कारण समझते थे। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि पुत्रों की भांति ही पुत्रियां भी ईश्वरीय अनुकंपा हैं और मानवीय मूल्यों की दृष्टि से दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। इसी कारण अज्ञानता के काल की भांति लड़कियों का अपमान एक गलत विचार और अनुचित व्यवहार है, किंतु कुरान मजीद का लक्ष्य यह है कि वो उन्हीं के तर्क से उनकी आलोचना करे कि तुम किस प्रकार के लोग हो कि अपने पालनहार के संबंध में उस बात की आस्था रखते हो जिसे स्वयं के लिए अपमान समझते हो।
प्रत्येक दशा में ये आयत इस प्रकार की गलत आस्थाओं को नकारते हुए कहती है कि क्या ईश्वर ने तुम्हारे लिए लड़कों का चयन किया है जो शक्ति का प्रतीक तथा धन कमाने का साधन है, और अपने लिए लड़कियों अर्थात फरिश्तों को रखा है? तुमने कितना अन्यायपूर्ण फैसला किया है।
बड़ी दुखद बात यह है कि इस्लाम से पूर्व के कुछ धर्मों में यह आस्था प्रचलित हो गई थी कि ईश्वर के संतान है। इस आस्था के कारण इन धर्मों के शुद्ध ईश्वरीय शिक्षाओं में फेरबदल हो गया। जैसा कि कुरान मजीद कहता है कि इतिहास के एक काल में यहूदी हजरत उज़ैर को, जो ईश्वरीय पैगंबर थे, ईश्वर का पुत्र समझते थे। हजरत ईसा मसीह के पश्चात भी ईसाइयों ने उन्हें, जो एक महान ईश्वरीय पैगंबर थे, ईश्वर का पुत्र कहकर उनकी उपासना आरंभ कर दी। आसमानी धर्मों के अनुयायियों के बीच अनेकेश्वरवादी विचारों के ये कुछ उदाहरण हैं।
ईसाई से हमने सीखा कि ईश्वर के बारे में यह आस्था रखना कि उसके संतान है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, एक अत्यंत निरर्थक एवं आधारहीन बात है।
जो बात हम अपने लिए पसंद नहीं करते, उसे ईश्वर के लिए किस प्रकार पसंद कर सकते हैं? किस प्रकार फरिश्तों के लिए लिंग का निर्धारण किया जा सकता है, जबकि वह मनुष्य है ही नहीं और उनकी सृष्टि ही अलग है?
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है और श्रोता सभा के अंत में आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता का जश्न शुरू। वरिष्ठ नेता ने इमाम खोमैनी के मजार पर हाजिरी दी। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि इस्लामी सरकार पीड़ितों की मददगार है। भारतीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ईरान के दौरे पर है और बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अमरीका के विमान वाहक युद्ध पोत पर हमले का अभ्यास किया। तो श्रोता, इसी के साथ हमें अनुमति दें, खुदा हाफिज।